मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों फिलहाल हम लोग फिलॉसफी पर बात कर रहे हैं, एंशियंट इंडियन फिलॉसफी पर, और आज मुख्य विषय के तहत मैं अब सीधे सीधे जो सांख्य दर्शन है उस पर बात करने जा रहा हूं। कहीं कहीं किताबों में आपको बकायदे सांख्य प्रणाली भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सांख्य दर्शन, हमारी जितनी भी प्राचीन दार्शनिक प्रणालियां हैं, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, इन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है सांख्य प्रणाली। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अभी मैंने जिन प्रणालियों के नाम लिए हैं ये लगभग लगभग आसपास की ही प्रणालियां हैं, और जब मैं कह रहा हूं लगभग लगभग आसपास की ही प्रणालियां हैं तो ये मान करके चलिए कि शताब्दी 8वीं-9वीं ईस्वी पूर्व से लेकर के इधर 4थी-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो दार्शनिक प्रणालियां हैं ये हमारा जो पूर्वी भारत है, बिहार वगैरह का जो हिस्सा है उधर नेपाल से सटा हुआ, वहां विकसित हुई है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि उस दौर में जब ये प्रणालियां विकसित हो रही थी तो काउंट किया गया है, जिसके हमें उल्लेख मिलते हैं कि 62 दार्शनिक प्रणालियां ऐसी थीं जिन्हें आप वैदिक विरोधी प्रणालियां मान सकते हैं, कह सकते हैं, यानी कि वो वेदों का विरोध करते थे, ईश्वर का विरोध करते थे, आत्मा का विरोध करते थे और अपनी बात कहते थे। 62 काउंट किए गए हैं, कहीं कहीं आपको 64-5 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सामान्यतः उन 62 में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं या कह लीजिए कि जिसमें थोड़ी सी नवीनता मिलती है वही खासकर आप कह लीजिए सिलेबस में शामिल किए गए हैं और उन्हीं की अक्सर चर्चा भी होती है, तो उसी में से एक प्रणाली है सांख्य प्रणाली। इसके जो प्रणेता हैं वो कपिल ऋषि हैं। कपिल ऋषि नाम आपने शायद सुना हो, और 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास के ये व्यक्ति माने जाते हैं। शायद कपिल ऋषि के नाम से आपको कपिल वस्तु का स्मरण हो आया होगा, कपिल वस्तु जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है कपिल वस्तु। तो कुछ लोग इस नाम के आधार पर भी ये कहते हैं कि दरअसल जो बौद्ध दर्शन है वह मूलतः इस सांख्य प्रणाली से ही निकलकर आई है, लेकिन चलिए वह एक अनुमान भर है, कोई इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो अब हम सीधे सीधे सांख्य प्रणाली की बात करते हैं। दोस्तों अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं या मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि आप इसके मूलभूत चरित्र को समझ सकें, यह कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, आप यही मान करके चलिए कि मैं आपको गलत बता रहा हूं, लेकिन इससे जो अर्थ निकलेगा वो गलत नहीं है। सांख्य को आप संख्या मान लीजिए, संख्या 1, 2, 3, 4, संख्या का मतलब है मैथमेटिक्स, गणित, और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो गणित है वो अपने आप में शुद्धतः विज्ञान है, गणित से शुद्धतः विज्ञान और कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहें तो उसके कितने भी टुकड़े करते चले जाइए, गणित में वो विभाजित होता चला जाएगा, गुणा करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए और बिल्कुल विशुद्ध रूप से आपको उत्तर मिलेंगे। तो सांख्य को यदि हम यहां संख्या एक बार मान लें तो इसका मतलब है विशुद्ध विज्ञान, और यह जो प्रणाली है यह दर्शन शास्त्र की बिल्कुल आप यूं कह लीजिए वैज्ञानिक अवधारणा को लेकर के चलने वाली प्रणाली है, चलने वाला विचार है, ये बिल्कुल विज्ञान की बात करता है। अगर वह विज्ञान की बात कर रहा है तो कुछ बातें आप बहुत साफ तौर पर कह सकते हैं, अब अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस तरह की बातें आपके सामने रख चुका हूं। सीधी सी बात है कि जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, आत्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, उसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो ईश्वर भी विश्वसनीय नहीं है। आप अपनी तरफ से ये वाक्य जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए कि जब आप इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? तो सीधी सी बात है कि हम तर्क पर विश्वास करेंगे, उपायों पर विश्वास करेंगे। और तर्क इनका क्या था, जो मूलभूत तर्क है सांख्य दर्शन का, अब उसे सुनिए। इन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, देखिए हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड है इसका जो जन्म हुआ है वह पदार्थ से हुआ है, मटेरियल से हुआ है, और अगर यह बात कही जा रही है तो सीधी सी बात है कि वो वैदिक दर्शन के उस विचार को नकार रहा है कि संसार का जन्म ब्रह्म से हुआ है, ब्रह्म ने इस संसार को रचा है, बात खत्म हो गई। और फिर पदार्थ की बात कर रहा है, पदार्थवादी दर्शन को लेकर के आ रहा है। पदार्थ क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब के सब पदार्थ हैं। सीधी सी बात है कि पदार्थ से हुआ है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण। जब वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण पदार्थ से हुआ है, तो देखिए अब अगर आप सोचते चलेंगे तो ढेर सारी इसकी विशेषताओं के सूत्र आपके हाथ में पढ़ते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। जैसे कि एक ऊन का गोला है, बड़ा सा गोला है, लिपटा हुआ है, लेकिन अगर उसका एक छोर आपकी पकड़ में आ जाए तो उसे खींचते चले जाए तो आप आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे। अब इस छोर को पकड़िए कि ब्रह्मांड का उद्भव पदार्थ से हुआ है, तो क्या अचानक हो गया? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि पदार्थ से हुआ है इसका उद्भव, ये सांख्य दर्शन कह रहा है, तो क्या अभी जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है जिस रूप में, वह अचानक आ गया, अचानक प्रकट हो गया? जब आप सोचेंगे तो आपको बड़े आराम से यह सत्य हाथ आ जाएगा कि नहीं, अचानक नहीं हुआ है, यह धीरे धीरे हुआ होगा। विकास की प्रक्रिया में यह ब्रह्मांड बना है। अब यहां आप डार्विन के विकासवाद को ले आइए। अगर डार्विन के विकासवाद के बारे में आपको जरा भी मालूम हो, तो डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत क्या है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो क्रमशः हुई है, धीरे धीरे हुई है, अचानक मनुष्य इस धरती पर नहीं आ गया है। पहले बिना कोशीय जीव था, एक कोशीय जीव हुआ और इस तरीके से करते 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 धीरे धीरे मनुष्य वर्तमान स्थिति में आया, यानी कि धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो ब्रह्मांड का भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। और इस इवोल्यूशन में देखिए, वो पदार्थ की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, मनुष्य तो पदार्थ नहीं है, मनुष्य की चेतना भी पदार्थ नहीं है, उसमें जो जीवन है वह भी पदार्थ नहीं है, तो फिर इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे बने? इसके लिए भी उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि नहीं, ये जो जीवन है, जो जीवनी शक्ति है, जो विचार करने की ताकत है, जो हमारी चेतना है, यह भी मूलतः पदार्थ की ही उपज है। सोच करके देखिए कितना जबरदस्त पदार्थवादी दर्शन की बात कर रहे हैं। यहां कोई अध्यात्म नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई अलौकिकता नहीं है, वो सीधे सीधे अपनी बात रख रहे हैं। और इसी के तहत फिर उन्होंने एक प्रणाली दी थी, एक दर्शन दिया था, या कह लीजिए एक शाखा बनाई थी, जिसे उन्होंने कहा समेकिकता का सिद्धांत। कुछ लोग इसे सत्कार्यवाद भी कहते हैं, सत्कार्यवाद का सिद्धांत, समेकिकता का सिद्धांत। ये बहुत ही सरल है, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने के ऐसे प्रश्नों की संभावना रहती है। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है, इसे समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। इस सिद्धांत की स्थापना इस वाक्य से होती है कि किसी भी वस्तु की जो उत्पत्ति होती है वह शून्य से नहीं हो सकती, शून्य से नहीं हो सकती, यानी कि कोई चीज अचानक प्रकट नहीं हो गई है अपने आप। तो फिर कैसे हुई है? तो फिर ये कहते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी मौजूद है, जिस रूप में भी मौजूद है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। यहां भी आपको देखिए विज्ञान किस तरीके से दिखाई दे रहा है, पदार्थ किस तरीके से दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज शून्य से नहीं पैदा हुई है, तो किससे पैदा हुई है? सीधी सी बात है कि पदार्थ से पैदा हुई है, उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। कितना जबरदस्त वैज्ञानिक सिद्धांत। ये सिंपल सी थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन है इसकी मूलभूत थ्योरी और बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां मैं अब थोड़ा सा जीवन के संदर्भ में एक बात आपसे कहना चाहूंगा। यदि आप सांख्यवाद का समर्थन करते हैं, सांख्य दर्शन का, तो इसमें एक छोटा सा एक उद्धरण मिलता है प्रहलाद के संदर्भ में उद्धरण। चलिए मैं उस कथानक पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन वे शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, मैं अपने शब्द इसमें डालना नहीं चाह रहा हूं, चीजें प्रदूषित हो जाती हैं। उसमें लिखा गया है, सांख्य दर्शन का यह हिस्सा है, कि यदि मैं नश्वरता के सभी नियमों के मूल को जानता हूं, यदि मैं नश्वरता के सभी नियमों के मूल को जानता हूं कि वस्तु कैसे नष्ट हो जाती है, नश्वरता, और अगर कैसे नष्ट हो जाती है को आप जानते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये वस्तु बनती कैसे है। यानी कि अगर मैं जान जाता हूं कि इस वस्तु का निर्माण कैसे होता है, और फिर यदि मैं जान जाता हूं कि यह वस्तु नष्ट कैसे होती है, और यदि मैं सभी वस्तुओं की अस्थिरता से परिचित हूं, अस्थिरता से परिचित हूं, यानी कि अभी जो वस्तु जिस रूप में है मेरे सामने वो उसी रूप में नहीं रहेगी, वो अस्थिर है, कुछ समय के बाद उसका रूप बदल जाएगा, धीरे धीरे बदलता रहेगा, उसे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वो वस्तु बदल रही है, गतिशील है। अब आप देखिए, आप किसी रंग को ले लीजिए तो धीरे धीरे वो रंग फीका पड़ने लगेगा, किसी पदार्थ को ले लीजिए तो उसका ताजापन खराब होने लगेगा, वो पदार्थ सड़ने लगेगा, लकड़ी लोहा को ले लीजिए तो उसमें जंग लगने लगेगा, तो अस्थिर है ना, वो ज्यों का त्यों नहीं रह रहा है। और यह भी मैं जान जाऊं कि जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो मैं दुख से पीड़ित नहीं हो सकता, तो मैं कभी भी दुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको जीवन भर सुखी रहने के लिए और इससे जबरदस्त सिद्धांत क्या चाहिए? इसका मतलब है कि अगर आपकी चेतना तर्कयुक्त है, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये मान करके चलेंगे कि भाई ये तो होना ही था, इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो इसका गुण है, यह तो इसका लक्षण ही है। कभी भी दुखी नहीं हो सकता, और इन सब यातनाओं को सहना उद्देश्य परक होता है। इससे जो आपको तकलीफ मिल रही है उसे आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि उसका अपना एक मकसद है, उसका अपना एक उद्देश्य है। इस तरीके से देखें कि किस तरह से सांख्य दर्शन हमें जीवन को जीने के लिए इतना बड़ा महामंत्र प्रदान करता है। दोस्तों, और यदि आप मेरे लाइफ मैनेजमेंट को इस कसौटी पर कसकर देखेंगे तो पाएंगे कि वहां से भी जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं वे शायद इसी सांख्य दर्शन के आसपास ही हैं। कहने का अंदाज अलग हो सकता है, शैली अलग हो सकती है, लेकिन है लगभग लगभग उसी प्रजाति के विचार। तो दोस्तों, सांख्य दर्शन के बारे में जो बहुत मूलभूत, जो बेसिक बात मुझे बतानी थी, वो मैंने यहां आप लोगों के सामने रखा है। यदि आपके पास वक्त हो, कुछ किताब मिल जाए, या गूगल पर चले जाइए, थोड़ा सांख्य दर्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको अब वहां जितनी भी बातें होंगी वो वैसे तो बड़ी कठिन लगती हैं, समझने में तो उबाऊ भी लगती हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। और ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे ईमेल लिखें, ईमेल मैं आपके पढ़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इसी के साथ ही इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहां समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।